नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कश्मीरी गेट बस अड्डा से उत्तर प्रदेश के बड़ौत तक नई बस सेवा का शुभारंभ किया। दिल्ली नगर निगम ने आज 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्ष 2023 के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन 25 से 28 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा और सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 25 सितंबर से नई दिल्ली में नदी उत्सव के 6वें संस्करण का आयोजन करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कश्मीरी गेट बस अड्डा से उत्तर प्रदेश के बड़ौत तक नई बस सेवा का शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने आधुनिक प्वाइंट ऑफ सेल मशीनों और चलो ऐप का भी लोकार्पण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सालों से बंद पड़ी अंतर्राज्यीय बस सेवा को दिल्ली सरकार ने दोबारा शुरू किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से बड़ौत के बीच नई एसी बस सेवा सस्ती, सुलभ, विश्वसनीय और सर्वसमावेशीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के सरकार के संकल्प का प्रतीक है। दिल्ली नगर निगम ने आज सिविक सेंटर में 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी और विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान का आयोजन किया। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए निगम के उप महापौर जय भगवान यादव ने कहा कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और जीवन शैली का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद भारत की प्राचीन धरोहर है जो आज भी लोगों के स्वास्थ्य को प्राकृतिक तरीके से सुरक्षित रखने का सबसे सशक्त माध्यम है। श्री यादव ने कहा कि दिल्ली नगर निगम का प्रयास है कि आयुर्वेद के लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे और आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और सशक्त बने। दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने आज सेवा पखवाड़े के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में निगम और लोक निर्माण विभाग के लगभग 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि अभियान का उद्देश्य दिल्ली वासियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हरित दिल्ली के संकल्प को और मजबूत करना है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली वासियों के सहयोग से निगम राजधानी को साफ और सुंदर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग रिंग रोड पर सफाई अभियान चलाया। इस अभियान में स्कूल के बच्चों, स्वच्छता ग्रहियों, विधायकों और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह भागीदारी दिल्ली वासियों को विश्वास दिलाती है कि स्वच्छ दिल्ली का सपना केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हर दीवार, हर सड़क और हर घर के बाहर सफाई और अनुशासन की संस्कृति स्थापित करना ही दिल्ली सरकार का संकल्प है। उन्होंने दिल्ली वासियों से अपील करते हुए कहा कि स्वच्छ और सुंदर दिल्ली केवल आज की जरूरत नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने लोगों से स्वच्छता के संकल्प को निभाने और विकसित दिल्ली का निर्माण करने की अपील भी की। राजधानी दिल्ली में आज सेवा पखवाड़े के अंतर्गत दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने राजधानी कॉलेज के सामने फ्लाईओवर के नीचे स्वच्छता अभियान में भाग लिया। इस अवसर पर स्वच्छता अभियान का उद्देश्य लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना है। श्री सूद ने फ्लाईओवर के नीचे वर्षों से जमा कूड़े के ढेर को नगर निगम के कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं के सहयोग से साफ किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़े में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने संकल्प लिया है कि दिवाली से पहले शहर में रिंग रोड और उसके आसपास के क्षेत्रों को साफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाए रखना शहरवासियों की सामूहिक जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज राजधानी के आजादपुर सब्जी मंडी मार्केट में व्यापारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि नए जीएसटी सुधारों से बाजारों में दुकानदारों और ग्राहकों में हर्ष का माहौल है। उन्होंने कहा कि नए जीएसटी सुधारों से मेड इन इंडिया उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा।
मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने जीएसटी के नए रिफॉर्म्स लाए, न्यू जीएसटी रिफॉर्म, जिसके अंतर्गत बहुत सारी वस्तुओं का 0% हो गया और बहुत सारा का घटा के, बहुत भारी मात्रा में घटा करके मिनिमम न्यूनतम कर दिया, तो ये देखने को मिल रहा है परिणाम कि ग्राहकों की संख्या भी प्रत्येक दुकान में बढ़ गई है और इस बार की जो दिवाली है उसमें डबल डिस्काउंट हो गया।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस महीने की 27 तारीख से शुरू होने जा रहे विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा की व्यापक तैयारियां की हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस के दक्षिणी जिले के अतिरिक्त उपायुक्त सुमित झा ने बताया कि इस आयोजन के लिए दिल्ली पुलिस के 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है।
वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन यहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जा रहा है। इसके आयोजन में दिल्ली पुलिस की तरफ से 1000 से ज्यादा जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल और ऑफिसर्स लगाए गए हैं, इसमें बहुत ही इलैबोरेट सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया है। इस सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान के अनुसार हमने एयरपोर्ट से ही, जहां पर खिलाड़ी और ऑफिशियल्स आएंगे वहां पे रिसेप्शन और फैसिलिटेशन के लिए, वहां पे दिल्ली पुलिस की तरफ से डिप्लॉयमेंट किया गया है।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से बरामद मादक पदार्थ की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ रुपए से अधिक है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी विदेशी नागरिक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला केंद्रित फिल्मों के निर्माण और उन्हें मिल रहे पुरस्कारों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह एक बहुत ही सकारात्मक सामाजिक संकेत है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2023 के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर ये बात कही।
महिलाओं पर केंद्रित अच्छी फिल्में बन रही है और पुरस्कृत भी हो रही है, ये बहुत अच्छा सामाजिक संकेत है। आज पुरस्कृत फिल्मों में माताओं द्वारा बच्चों के नैतिक निर्माण की कहानी, सामाजिक रूढ़ियों का सामना करने के लिए महिलाओं का एकजुट होना, घर परिवार और सामाजिक व्यवस्था की जटिलता के बीच महिलाओं की स्थिति तथा पटियार्ची की विशेषताओं के विरुद्ध आवाज उठाने वाली साहसी महिलाओं की कहानियों पर आधारित फिल्म में शामिल है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को कंटेंट निर्माण का केंद्र बनाने का एक बहुत ही स्पष्ट दृष्टिकोण है।
प्रधानमंत्री जी का बहुत क्लियर विजन है कि भारत को कंटेंट क्रिएशन का हब बनाना है, हमें कि विश्व के सामने हम एक नए फॉर्मेट में एक नए प्लेटफॉर्म को क्रिएट करेंगे और वेव्स मुंबई में हाल ही में आप सबके सामने आए।
समारोह में फिल्म निर्माण और उत्कृष्ट अभिनय के लिए विभिन्न श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। एक रिपोर्ट।
महान अभिनेता, निर्देशक और निर्माता मोहनलाल को सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म 12th फेल को, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री को तथा रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए दिया गया। शिल्पा राव को जवान के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका और PVNS रोहित को तेलुगु फिल्म बेबी के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला है। उत्पल दत्त को असमिया भाषा में महत्वपूर्ण और व्यापक आलोचनात्मक लेखन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। सुदीप्तो सेन की फिल्म द केरल स्टोरी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का और शिल्पिका बोरदोलोई को फिल्म माऊ द स्प्रिट ड्रीम्स ऑफ चेराओ के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार मिला। रिम दो गिंगटा को सर्वश्रेष्ठ गारो फिल्म का पुरस्कार दिया गया। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन 25 से 28 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
वर्ल्ड फूड इंडिया के चौथे संस्करण का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और भारत की समृद्ध खाद्य संस्कृति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। नई दिल्ली में आज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया केवल एक व्यापार मेला नहीं बल्कि भारत को खाद्य नवाचार, निवेश और स्थिरता के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने का एक परिवर्तनकारी मंच है। श्री पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण की विभिन्न अवधारणाओं पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न शीर्षक से एक प्रकाशन का भी विमोचन किया। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 एक वैश्विक खाद्य का केंद्र बनने के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में कार्य करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान के लिए एक लेख को उन्होंने साझा किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में भारत की नवाचार गाथा पाथवेज टू प्रोग्रेस शीर्षक के विश्लेषण और अंतर्दृष्टि पर एक रिपोर्ट जारी की। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक के अनुसार 139 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 38वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के परिदृश्य में नवाचार राष्ट्रीय वरीयता का विषय बन चुका है। अपने संबोधन में श्री प्रधान ने सशक्त नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। यह तंत्र नए विचारों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए शोध संस्थानों, स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों को जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत को उपभोक्ता अर्थव्यवस्था से उत्पादक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होना चाहिए। प्रादेशिक समाचार के लिए प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ जया भारती।
संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इस महीने की 25 तारीख से नई दिल्ली में नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन करेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये कार्यक्रम नदियों और सामुदायिक आजीविका के बीच संबंधों पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों और रचनात्मक कलाकारों को एक साथ लाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय संगोष्ठी, वित्त चित्र फिल्म महोत्सव, कार्यशाला, प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने इस वर्ष जुलाई में 21 लाख से अधिक नए सदस्य जोड़े हैं। विश्लेषण के अनुसार पिछले वर्ष के जुलाई महीने की तुलना में शुद्ध वेतन वृद्धि में 5.55% की वृद्धि हुई है। श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने बताया कि जुलाई में 18 से 25 आयु वर्ग में लगभग 5,98,000 नए सदस्य जुड़े। इसके अलावा जुलाई महीने में 2 लाख से अधिक नई महिला सदस्य ईपीएफओ से जुड़ी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी में आज मौसम सामान्य रहा। आज का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आसमान साफ रहेगा, वहीं कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कश्मीरी गेट बस अड्डा से उत्तर प्रदेश के बड़ौत तक नई बस सेवा का शुभारंभ किया। दिल्ली नगर निगम ने आज 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वर्ष 2023 के 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन 25 से 28 सितंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा और सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 25 सितंबर से नई दिल्ली में नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।